ओम शांति। बोल लें जरा आप ओम शांति। आप सभी यहाँ आकर विशेष रूप से आनंदित हो रहे होंगे, ठीक है? आनंदित हो रहे हैं इधर घर बार और धंधे भूलकर ईश्वरीय चर्चाओं में, ईश्वरीय चिंतन में आपका समय बीत रहा है, ऐसा ही है या याद आता है कुछ? माताएं भूल गई होंगी अपने बच्चों को, भूल गई या याद आते हैं रोज? ठीक है, याद भी करना है तो कल्याणकारी भावना से। एक प्रश्न है आपसे, पहले सोचना बहुत अच्छी तरह। जीवन की इस यात्रा में अगर आपको भगवान मिल जाए तो कैसा रहेगा? इस जीवन में यदि आपका मिलन भगवान से हो जाए कैसा रहेगा? कैसा रहेगा है? उद्धार हो जाएगा। चाहते हैं आप कि आपका मिलन भगवान से हो जाए? पूछ लें आप अपने से। इस सभा में जो भी बैठे हैं, क्या उन सभी के अंतर मन से ये आवाज निकलती है कि इस जीवन में अगर भगवान मिल जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाए? भक्ति करते आए हैं न केवल इस जन्म लेकिन पिछले कई जन्मों से, पुकारते आए हैं उसको और उससे मिलने की इच्छा भी बड़ी तीव्र है हरेक के मन में। आप अपनी इच्छा को चेक कर ले जरा, कहीं सांसारिक बंधनों में बंधते हुए ये इच्छा मर तो नहीं गई है? अगर मर गई हो फिर से जीवन दे दे इसको, जागृत कर ले। हमारा मिलन हमारे परम पिता से अवश्य होता है। अगर वो हमसे मिले ही नहीं तो वो परम पिता कैसा, ठीक है ना? बाप अपने बच्चों से मिले ही नहीं और बच्चे हजारों साल से पुकार रहे हों तो उसके परम पिता होने की सार्थकता ही क्या है? वो मिलता है और इस जन्म में आपको मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है। लंबी तपस्या की आवश्यकता नहीं। जो लंबी तपस्या करनी थी, जो लोग कहते हैं आचार्य और विद्वान कि हजारों साल की तपस्या के बाद भगवान मिलता है, वो तपस्या तो कर ली है पिछले जन्मों में। अब उस तपस्या का फल देने के लिए स्वयं हम सबके परम पिता हमसे मिलने के लिए आते हैं। आज जब ये टॉपिक मुझे दिया गया तो पहला संकल्प मुझे आया था कि कर्म तो भगवान भी करते हैं, कर्म तो देवता भी करते हैं और मनुष्य भी, लेकिन तीनों के कर्मों में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान के कर्म दिव्य और अलौकिक होते हैं जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान की महिमा है, ग्रंथ और शास्त्र भरे पड़े हैं उसकी महिमा में। उसकी महिमा ये सिद्ध करती है कि उसने इस संसार में कार्य किए हैं। उसे हम प्यार का सागर कहते हैं। जरूर उसने प्यार बांटा है, जरूर उसका इतना अथाह प्यार मनुष्यों को मिला है कि ये मान लिया गया वो प्यार का सागर है। उसको दुख हरता कहते हैं। जरूर उसने दुख हरा होगा, अगर वो दुख न हरता हो तो उसे दुख हरता कोई क्यों कहेगा, ठीक है ना? भगवान भी कर्म करते हैं, देवता भी कर्म करते हैं और मनुष्य भी। तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब एक दूसरा प्रश्न है आपसे। पीछे जो कुछ आपने सुना है एक दो दिन, उसको जरा अपनी बुद्धि में फिर से रिफ्रेश कर लें। आप कौन हैं? कौन हैं आप? आत्मा किसके हैं? मैं थोड़ा आधा प्रश्न पूछ लिया है, किसके बच्चे हैं? परम पिता के, शिव बाबा के। अब हम उसे शिव न कह के शिव बाबा कह देते हैं, क्योंकि वो हमारा परम पिता है, हम भगवान के बच्चे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, सोचती है मन से, बुद्धि में विवेक भरा है उसकी, विवेक शक्ति उसके पास है, निर्णय करती है आत्मा, डिसीजन लेती है अपने जीवन में। हम हाथों से कर्म करते हैं, पैरों से करते हैं, शरीर की कर्म इंद्रियों को कर्म में लगाते हैं, पर करने वाली है कौन? आत्मा। शरीर नहीं, कर्म कर रही है आत्मा, शरीर उसका साधन है। ठीक है ना, ये बात तो समझा दी गई है, मैं जस्ट रिपीट की है ताकि आपको ये कॉन्शियस, ये स्मृति, ये याद रहे कि मैं आत्मा। भ्रकुटी पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर, ये आसन है आत्मा का, मैं आत्मा इस पर बैठकर हाथों से, शरीर से कर्म करती हूं। आप अपने अभ्यास में इसका रोज अभ्यास करेंगे, कर्म करते हुए, तो आपको बहुत अच्छा सुख का, आनंद का अनुभव होता रहेगा। तो हम सभी कर्म कर रहे हैं, निरंतर मनुष्य कर्म करता है, निरंतर 24 घंटे देखना, सुनना, बोलना, यहां तक कि सोचना भी कर्म है। हाथों से बहुत सारे हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म दूसरों से जुड़े होते हैं। एक मनुष्य जो कर्म करता है उसका प्रभाव दूसरों पर आता है। हमें कैसे कर्म करने चाहिए? सबसे पहले हम सतयुग से चलें, जो आज का विषय है उसको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट कर लें। वैसे तो कर्मों की गति बहुत गहन है, गीता में भी कहा गया है और भारतीय दर्शनों में भी वर्णन है कि कर्म की गति बहुत गहन है, उसको समझना भी अच्छे विवेक की आवश्यकता है उसके लिए। साधारण विवेक के द्वारा, साधारण ज्ञान के द्वारा कर्म की गुह्य गति को जानना बहुत कठिन है। बहुत लोगों से हम पूछते हैं तो उत्तर देते हैं कि हम जीवन में कोई पाप नहीं करते, हमने तो अपने जीवन में ध्यान रखा है कि हम कोई पाप नहीं करते। परंतु जब उनके बच्चों से पूछते हैं कि आपके पापा गुस्सा भी करते हैं, कहते हैं बहुत करते हैं, पापा को ये पता नहीं कि गुस्सा करना भी पाप है, वो तो समझ रहे हैं कि गुस्सा करना तो क्या है, हथियार है मनुष्य का, शस्त्र है मनुष्य के पास क्रोध, तो उसे पता नहीं चलता कि ये भी कोई पाप होता है। और बहुत सारे सूक्ष्म पाप, छोटे छोटे पाप और मोटे पाप भी मनुष्य के द्वारा होते रहते हैं। हमारा लक्ष्य है आज की क्लास में कि मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य क्या क्या हैं, लेकिन अपने पापों की डीप रियलाइजेशन, अपने पापों की महसूसता करके आज उनसे छुटकारा पाने का संकल्प करना है। यहाँ जो भी आप क्लासेस सुनते हैं, अपना लक्ष्य बनाए रखें मन में कि केवल सुनने तक काम न रह जाए, केवल इतना न रह जाए कि बहुत अच्छी बातें सुनाई जा रही हैं, अच्छी तो हैं ही, लेकिन अच्छी बातें अच्छी तभी बनती हैं जब उनसे जीवन अच्छा बन जाए। हमारा जीवन वैसे भी दर्पण है, एक पुस्तक है जिससे सभी को प्रेरणा मिलती है, जिसको देखकर दूसरे लोग सीखते हैं, तो यहां बैठकर आप सभी अपने अपने को देखेंगे, आत्म आपको पहले दिन से ही आत्मदर्शन का ज्ञान दिया जा रहा है। आज आत्मदर्शन करेंगे आप इस तरह से कि मेरे अंदर, मेरे मन में कौन कौन सी ऐसी बुरी चीजें समाई हैं जिन्हें पाप कहा जाए, विकर्म कहा जाए, जो आत्मा को अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। पाप ऐसी ही चीज है जैसे आप अपने घर में किसी डब्बे में गंदगी रख दो तो क्या होता रहेगा, सारे घर में बदबू फैल जाएगी। शायद डब्बा बंद हो, आपको पता ना चले बदबू कहां से है, और घर में स्प्रे कर दो बहुत अच्छा सुगंधित अगरबत्ती जला दो तो सुगंध फैल जाएगी। मनुष्य के मन की डिब्बी में अगर कुछ बुरी भावनाएं, बुरे विचार, पाप कर्म समाया हुआ है तो उससे जीवन में गंदगी फैलती है, मन सुखी नहीं रहता, जीवन में खुशी का अभाव हो जाता है और मनुष्य प्यार के लिए, शांति के लिए इधर उधर देखने लगता है। उसे लगता है इस संसार में कोई भी उसे प्यार नहीं करता, इस संसार में उसके जीवन में चैन नहीं है, पर उसे प्यार कोई करे क्यों जबकि मन से बदबू निकल रही है, उसके पास कोई आएगा क्यों जबकि उसने अपने अंदर गंदगी को स्थान दे दिया है। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से सुगंधित बनाएं। चलते हैं हम सतयुग से। आप सभी को सतयुग के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान यहां मिला होगा, बताया है चक्र, चक्र का लेसन अभी नहीं हुआ। आप सभी को ये मालूम हो जाएगा बहुत अच्छी तरह, और मैं बहुत संक्षेप में सतयुग के बारे में आप सभी को इतना कहूंगा कि सतयुग में जब हम मनुष्य आत्माएं इस संसार में उतरे तो हम कैसे रहे होंगे, सोच लें आप जरा। मनुष्य आत्मा जब अपने घर से, घर का तो ज्ञान है ना, कहां से, परम धाम से, जहां वो संपूर्ण थी, शांतमय थी, वहां से जब आत्मा नीचे उतरी होगी तो हम कैसे रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, हम थे देवी देवता। आपको और विस्तार से इसका ज्ञान मिल जाएगा और आप सभी को यहां ये पहचान लेना है कि हमारा पहला जन्म देवी देवताओं का है, वो कोई और नहीं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, वो हम ही पहले पहले थे। और इस बात को जानकर अपनी अवेयरनेस को, अपने चिंतन को इस तरह नया मोड़ देना है कि हम देवताओं के वंशज हैं, भगवान के बच्चे हैं और देवताओं के वंशज, देवताओं के जो वंशज हैं उनका कर्म कैसा होना चाहिए। अपने चिंतन की धारा को इस तरह आप नया मोड़ दें। इस बात को हम भारतवासी भूल गए हैं कि हम देवों की संतान हैं, देवताओं के वंशज हैं। हम तो सोचते हैं मंदिरों में देवी देवताओं के चित्र बना दिए हैं, कोई कहता है ये पत्थर की मूर्ति क्यों इसको पूजते हो, कोई कहेगा ये अंधश्रद्धा है, और कोई उनके आगे जाके नमन करके अपने को धन्य समझते हैं। परंतु ये भूल गए हम सब भारतवासी कि हम ही देवी देवता थे, इसलिए उनसे हमारा बहुत प्यार है, हमारा उनसे संबंध है। तो सतयुग और त्रेता युग में जब ये संसार स्वर्ग कहलाता था, ये भी नई बात है, स्वर्ग ऊपर नहीं, सतयुग और त्रेता युग का ये संसार स्वर्ग कहलाता था, जहां मनुष्य के कर्म देवताओं के कर्म कैसे होंगे? देवताओं के कर्म, उनको हम नाम दे देते हैं एक शब्द, अकर्म। वैसे तो देवताओं के कर्म कहा जाएगा बहुत श्रेष्ठ, परंतु इसको अकर्म शब्द नाम दिया गया है। इसका अर्थ है, ये जो अकर्म शब्द है इसकी व्याख्या गीता में भी की गई है और दर्शनों में भी। और क्योंकि कर्म से पहले ए आया है, ए कर्म, तो लोगों ने समझ लिया कि ए कर्म का अर्थ है कर्म न करना, कर्महीनता, निष्क्रियता। परंतु ए कर्म का अर्थ ये नहीं होता, इसका कुछ दूसरा अर्थ है, क्योंकि मनुष्य सदा कर्म तो करेगा ही, ठीक है ना। एक सेकंड भी कोई मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। अकर्म का अर्थ है देवता वो कर्म नहीं करते, इस भावना से कर्म नहीं करते कि उन्हें उसकी कुछ प्राप्ति हो। बिल्कुल नई बात है, ऐसे भी कर्म किए जाते हैं जिसकी उन्हें कुछ प्राप्ति न हो। इसका कारण है कि देवताओं को, जो स्वयं देवता हैं, जो संपूर्ण हैं, जो भरपूर हैं, उन्हें जीवन में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। देवताओं के बारे में भारतवासी लोग बहुत कम जानते हैं, केवल स्तुति होती है मंदिरों में, कीर्तन और भजन होते हैं। पर देवताओं ने देव पद कैसे पाया है? वो मनुष्य थे, मनुष्य वो देवता बने थे, और जब वो मनुष्य देवता बने तब उन्होंने इतने श्रेष्ठ कर्म कर लिए, इतने महान कार्य किए कि उसके फल में, उसकी प्रारब्ध से उन्हें देव पद प्राप्त हो गया। जब वो देवता बन गए तो फिर उन्हें किसी प्राप्ति के लिए कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं रही। जैसे आज मनुष्य कर्म करता है पैसा कमाने के लिए, एक उदाहरण है। और भी किसान कर्म कर रहा है खेतों में अन्न उपजाने के लिए, फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं कुछ नई चीज बनाने के लिए, कमाने के लिए। तो एक नॉर्मल कर्म तो सतयुग में भी चलते हैं, कपड़े भी होंगे, उनकी सिलाई भी होगी, कपड़े बनेंगे भी, भोजन भी होगा, भोजन खाया भी जाएगा। ये नॉर्मल कर्म तो सदा ही चलते आए हैं, पर कुछ प्राप्ति के लिए कर्म करना कि हम ये कार्य कर रहे हैं इससे हमें संपत्ति प्राप्त होगी, इसके लिए देवताओं को कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए देवताओं के कर्मों को अकर्म कहा जाता है। निष्क्रियता नहीं, ऐसा नहीं वो कुछ नहीं करते। देव युग में तो विज्ञान अपनी सर्वोच्च स्थिति में है, अब से भी आगे रिफाइन। और आप देख रहे हैं कि भारत, मैं आपको एक और बात बता दूं इस टॉपिक से हटकर जरा सी, कि हमारे देखते ही देखते अगले 10 सालों में भारत का विज्ञान संसार में सबसे आगे निकल जाएगा, रिफाइन होकर परफेक्ट हो जाएगा। और वो विज्ञान मनुष्यों को, देवताओं को संपूर्ण सुख प्रदान करेगा। आज के विज्ञान ने भी सुख देने की कोशिश की है, परंतु सुख के साथ उसमें दुख भी सम्मिलित हो गया है। तो देवताओं के कर्मों को अकर्म कहा गया है। क्लियर है बात? क्लियर हो गई? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे ये कोई बहुत गहरी बात नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है फिर उसे और किसी प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती। द्वापर युग के बाद सतयुग और त्रेता धीरे धीरे बीता, हजारों साल में बीतकर जब मनुष्य द्वापर युग में पहुंचा तो एक संसार में विशाल परिवर्तन हो गया। आधा युग चारों युगों में से आधा कल्प, आधा हिस्सा पूर्ण हो गया। अब मनुष्य ने एक दूसरे काल में प्रवेश किया द्वापर युग से। आप में से जो इतिहास के स्टूडेंट रहे हों वो जानते होंगे कि भारत का इतिहास बस लगभग 2500 साल का ही प्राप्त है, उससे पहले का नहीं। उससे पहले के तो केवल पुराण लिखे गए हैं जिनमें पौराणिक गाथाएं हैं। हमारे पास इतिहास अधिकतम 2500 साल का है, द्वापर के प्रारंभ का है। द्वापर के प्रारंभ का भी एक्चुअली 100-150 साल का नहीं है, उसके बाद से भारत का इतिहास प्राप्त है। और भारत का इतिहास ही सबसे प्राचीन है, चाहे लोग मिस्र की सभ्यता को या और किसी सभ्यता को प्राचीन मानते हों, पर उन सब के पास इतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। द्वापर युग जैसे ही प्रारंभ हुआ तो मनुष्य के मन में विकृतियों ने प्रवेश किया, मनोविकारों ने थोड़ा थोड़ा प्रवेश किया, उनकी आंतरिक वृत्तियां दूषित हुई। मन जो बहुत शुद्ध था, जो संपूर्ण था, बिल्कुल प्योर था, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी आई और शुरू हुए पाप कर्म। द्वापर युग से पहले पाप कर्म का नाम निशान नहीं था, शब्दकोश में ही पाप शब्द नहीं था। इसका निर्माण द्वापर युग के बाद हुआ। पाप किसे कहेंगे, पाप की क्या परिभाषा, पुण्य की क्या परिभाषा, ये भी गुह्य गति है। जिसे मनुष्य पाप समझता है, पाप उससे और कहीं गहन है। जिसे मनुष्य पुण्य समझता है, पुण्य की गति उससे भी कहीं गहन है। बताएंगे आप पाप किसे कहते हैं? जो हम खराब कर्म करते हैं। बहने बताएंगे पाप किसे कहते हैं? शायद आपने कभी इसकी डेफिनेशन के बारे में तो नहीं सोचा होगा। सोचते होंगे पाप तो पाप है, किसे पाप कहेंगे, पाप को ही पाप कहेंगे। अब आप जब ज्ञान ले रहे हैं तो हम आपको इसकी सूक्ष्मता तक ले जाते हैं। आपको ये तो पता है हम आत्माएं हैं। मनुष्य जब स्वयं को आत्मा भूलकर देह समझ लेता है तब उसका देह अभिमान बढ़ता है, और देह अभिमान में जो कर्म किए जाते हैं वो प्राय सभी पाप बन जाते हैं। एक डेफिनेशन। दूसरी, कोई भी मनुष्य मनोविकारों के वश होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावना, इनके वश होकर जो काम करता है वो भी पाप बन जाता है। सुख संगति हो गई थोड़ी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और सब जो बुराइयां हैं, बुरी भावना के वश होकर जो मनुष्य कार्य करता है वो पाप बन जाता है। तीसरी परिभाषा जरा गहरी है, आप बहुत गहराई से सुनेंगे भी और विचार भी करेंगे कि मनुष्य जब कर्म करता है तो वो अपने मन का और बुद्धि का उपयोग करता है ना। पहले लेसन में आपको बता दिया, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, और हम कर्म करते हैं, कर्म की छाप पड़ जाती है हमारे अंदर, जिसे संस्कार कहते हैं। जब मनुष्य मन से सोचकर और बुद्धि से निर्णय लेकर कोई पाप कर्म कर लेता है तब तुरंत उसके मन की और बुद्धि की शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। इसलिए पाप कर्म वो कर्म है जिनसे मनुष्य के मन और बुद्धि की शक्तियां क्षीण हों, नष्ट हों। ये जरा गहरी परिभाषा है। आप देख सकते हैं आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, केवल सोचा भी किया नहीं, सोचते ही आपको अनुभव होगा आपके मन का सुख गायब। देख सकते हैं आप अपने जीवन में, आगे देख लें, आपने किसी को दुख देने वाले कटु वचन बोल दिए, बोलते ही आपका दुख प्रारंभ। ये गति है पाप के पीछे, ये हमारी मन और बुद्धि को दूषित भी करते हैं और उनकी शक्तियों को छीन भी करते हैं। इसलिए एक पापी व्यक्ति, चाहे वो अपने को कितना भी शक्तिशाली समझे, बहुत कमजोर होता है। उसका पाप उसे स्वयं भयभीत करता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई। हमारे यहां अब से बहुत साल पहले, 20-22 साल पहले, जब चंबल घाटी के डाकुओं ने समर्पित किया था, आपको याद होगा, बहुत साल की बात है, 450 डाकुओं ने समर्पण किया था, तो हमारी भाई बहनों की ओर से उनकी सेवाएं की गई थी, उन्हें ज्ञान दिया गया था। जेल में, खुली जेल में वो रहते थे, उनमें से 5 लोग ज्ञान और योग का अभ्यास करने लगे थे और उनमें से 2 बहुत अच्छी तरह योग अभ्यास करने लगे और उनमें से एक ने तो शरीर छोड़ दिया, एक अभी भी बहुत अच्छी तरह ज्ञान योग करते हैं और अपने जीवन का अनुभव चारों ओर सुनाते हैं। जा जाकर गुजरात में भी आए हैं, बॉम्बे में बहुत रहे, ऑल इंडिया में उन्होंने जाके अपने अनुभव सुनाए कि कैसे मैं खूंखार डाकू से मनुष्य बना। खूंखार डाकू, नाम भी था उसका पंचम सिंह, जिस पर हजारों हत्याओं का आरोप था, हजारों। वो जब पहली बार यहां आया तो उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था कि अब तो हम जेल से छूट गए, घर आ गए, परिवार से मिल गए, हमें सरकार ने खेती दे दी और साधन दे दिए हैं, हम ठीक ठाक रहते हैं, परंतु रात को अचानक ही मेरा शरीर कांपने लगता है, मैं बहुत भयभीत हो जाता हूं, बस इतना लगता है कि डर से चारपाई से भी नीचे गिर जाऊंगा, मैं अपने को संभाल नहीं पाता, इतना अशांत और दुखी हो जाता हूं, कई घंटे बीत जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। वो व्यक्ति जो जंगलों में हाथ में बंदूकें लेकर मनुष्यों की हत्या करने में नहीं हिचकते थे, वो रात को जहां कोई नहीं है भयभीत हो रहे हैं, क्यों? उत्तर स्पष्ट है ना, उसका पाप उसको भयभीत कर रहा है, उसका पाप उसको सोने नहीं दे रहा है, उसके पाप ने उसकी चैन हराम कर दी है। पाप ऐसा कर्म है जिसके फल से कोई मनुष्य छूट नहीं सकता। कर्म का फल हमारे पीछे पीछे परछाई की तरह चलता है, परछाई मिट नहीं सकती, परछाई तो साथ साथ चलती है। कर्म अच्छा हो या बुरा, मनुष्य को तत्काल भी फल देता है, तुरंत, और बाद में भी। कई लोग सोचते हैं कि कर लो जो कुछ करना है, अगले जन्म में फल मिलेगा ना, देखा जाएगा। अगला जन्म किसने देखा, अब तो मौज कर लो, अगले जन्म में नहीं, तुरंत, कुछ साथ साथ, कुछ थोड़ा आगे चल के, और बचा हुआ अगले जन्मों में। कर्म तो हमने जो कुछ कर लिया, आपने किसी से एक पैसा भी लेकर नहीं दिया, वो आपको ब्याज सहित देना ही पड़ेगा, ये संपूर्ण सत्य है। आपने किसी के लिए बुरा सोच लिया, उसका फल आपको मिलेगा ही, ये कर्मों की गहन गति है। तो द्वापर युग के बाद मनुष्य पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हुआ। पूरा द्वापर युग उसमें बहुत पाप नहीं हुए, थोड़े थोड़े पाप मनुष्य ने किए, जीवन बहुत मर्यादित था। इतिहास को जानने वाले लोग समझते हैं कि कितनी मर्यादाएं थी संसार में, कितना विश्वास था एक दूसरे पर, कितना सम्मान, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, एक दूसरे के प्रति सहयोग इस संसार में था। इसलिए भारत की सभ्यता सबसे महान मानी जाती थी। सारा संसार भारत की ओर प्यासी नजरों से देखता था। ये सब था कर्म का फल। आप सभी को ये बात जाननी चाहिए कि हजारों साल तक सारे संसार की पालना भारत ने की है। भारत को इसलिए मदरलैंड, भारत माता कहा जाता है। शायद किसी और देश के साथ माता शब्द का नाम जोड़ा नहीं गया है, या किसी के साथ है? सुना है संसार में कहीं आपने? पाकिस्तान मां, ईरान मां, मिस्र मां, नहीं है ना? केवल भारत माता। और माता क्या करती है? माताएं बताएंगी क्या करती है। माताएं बच्चों की पालना, बच्चों को शिक्षा देती हैं, गुरु होती है माँ बच्चों की। भारत विश्व का गुरु भी रहा है और भारत ने सारे संसार की पालना भी की है। और इसका कारण था कि भारत के मनुष्यों के कर्म बहुत महान थे। जब मनुष्य के कर्म महान हैं, द्वापर युग में भी, जबकि थोड़ा थोड़ा पाप शुरू हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा विरोध बढ़ा है, असहयोग बदले की भावना, शत्रुता की भावना बढ़ी थी, इसके बाद भी श्रेष्ठ कर्म भी थे। द्वापर युग के बाद पाप और श्रेष्ठ कर्म दोनों का खेल चलता रहा। किसी ने पाप ज्यादा किए, किसी ने अच्छे कर्म ज्यादा किए। आप सभी को ज्ञात रहे कि मनुष्य के पाप और पुण्यों के आधार से ही प्रकृति उसे सब कुछ प्रदान करती है। ध्यान से सुन लें आप फिर से, मनुष्य के पाप और पुण्य के आधार से ही प्रकृति से उसे वैभव, संपत्ति, खाना पीना, फ्यूल सब कुछ प्राप्त होता है। आज क्योंकि मनुष्य पाप की ओर बहुत प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए प्रकृति अन्न दे नहीं पा रही है। अगर आप किसानों के पास जाएं तो आपको पता चलेगा कि जमीन उपजाऊ नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, खाद डाले जा रहे हैं, जबरदस्ती उससे फसल ली जा रही है, और इस कारण आज के भोजन से बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि उसमें वास्तविक शक्ति नहीं है। और इसके जिम्मेदार हैं मनुष्य के पाप कर्म। द्वापर युग आया और मनुष्य पाप की ओर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसमें जो अच्छाइयां थी वो सब विस्मृत हो गई। पाप करने से दुख हुआ, दुख के निवारण के लिए मनुष्य ने भक्ति और धर्म की राह ली। भक्ति की जरूरत नहीं थी मनुष्य को, लेकिन जब वो दुखी हो गया तो मंदिर में जाके उसको शांति मिलने लगी, देवताओं की कीर्तन करके उसको सुख मिलने लगा, पूजा पाठ को उसने पुण्य कर्म समझा और वो धर्म और भक्ति की ओर प्रवृत्त हुआ। पाप भी बढ़ता गया, भक्ति भी बढ़ती गई। पहुंच गए हैं हम अब यहां जहां बैठे हैं, और आप सुन चुके होंगे सृष्टि चक्र के ज्ञान में आपको सुना दिया जाएगा कि हम अंत में पहुंच चुके हैं। जबकि मनुष्य हर कर्मेंद्री से पाप कर रहा है, इस संसार के प्राय सभी मनुष्य आंखों से, कानों से, मुख से, जीभ से, हाथों से पाप कर्म कर रहे हैं, जिसका मनुष्य को पता नहीं चल रहा है। पाप का माहौल है चारों ओर। अच्छे लोग भी हैं, सभी पापी नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं हमें मुख से बुरा नहीं बोलना चाहिए और ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं हमें आंखों से बुरा नहीं देखना चाहिए। उन अच्छे लोगों के आधार से ये संसार चलता है। इस संसार में सदा ही अच्छे आत्माएं रहती ही हैं, जिनकी अच्छाई के प्रभाव से, जिनके चरित्र के बल से, जिनके पवित्रता के प्रकाश से ये संसार चलता है। अगर इस संसार में सभी पापी हो जाएं, तो ये संसार नष्ट हो जाए, डेजर्ट बन जाए, वीरान हो जाए या मनुष्य मनुष्य को खा जाए। हमें जानना चाहिए कि आज जब मनुष्य अपनी नजर से भी पाप कर रहा है, क्या है नजर का पाप? दृष्टि का पाप। दृष्टि से बुरा देखना, इससे भी सूक्ष्म। अब आप यहां ज्ञान ले रहे हैं तो और सूक्ष्म बातों पर ध्यान दें। दृष्टि से केवल देह को देखना, केवल देह की ओर आकर्षित होना, आत्मा को भूल जाना, ये आंखों का पाप है। इस पाप से आत्मा की शक्तियां नष्ट होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग अंधे होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, वो बड़े गुणवान हो जाते हैं जल्दी। उन्हें आप कुछ सिखाएंगे, तेजी से सीख लेते हैं। बहुत सारे नेत्रहीन लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत चीजों में अच्छा अच्छा काम करने लगे हैं, बुनाई कर रहे हैं, धागा डाल देते हैं सुई में, बिगड़ी हुई मशीनरी को ठीक कर देते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि उनकी शक्तियां आंखों से नष्ट नहीं होती। आंखों से अगर बुरा देखा जाता है तो बहुत सारी मन की आत्मा की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। मुख से बुरा बोलकर, दुखदायी वचन बोलकर मनुष्य पाप करता है। आज संसार में ये पाप बहुत हो रहा है। घर घर में देख लीजिए, ऑफिसों में देख लीजिए, फैक्ट्रियों में देख लीजिए, बिजनेस संपर्क संबंध में मनुष्य एक दूसरे के लिए सुखदायी बोल नहीं बोलता। अधिकतर लोगों के बोल दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हमारे बोल अगर दूसरों की खुशी को छीन लें, हमारे बोल अगर दूसरों के दुख को बढ़ा दें, हमारे बोल अगर दूसरों के मन में टेंशन पैदा कर दें, हमारे बोल अगर दूसरों को उलझा दें, तो ये पाप कर्म है। बोल के द्वारा पाप। ठीक है, समझते हैं आप? ऐसा है, सभी जाग रहे हैं या किसी को नींद आ रही है? फिर से जरा देख लें अपने अपने साथियों को, कोई सो तो नहीं रहा? फिर भी सो रहे हो तो जरा जग जाएं, क्योंकि नींद कई लोगों को इस समय आती है। हवा भी बहुत ठंडी ठंडी होती है, और अच्छी बात सुन के नींद किन्हें आती है? पाप का खाता बहुत बढ़ा हुआ है, उससे अच्छे समय पर नींद आ जाती है। देखा होगा आपने, लोग कहते हैं भगवान ने जब भाग्य बांटा, तुम सोए हुए थे क्या? कहते हैं ना, जब किसी का भाग्य अच्छा नहीं दिखता, वो यही है। तो भगवान तो फिर से भाग्य बांट रहा है, आप जितना चाहे ले लें। तो द्वापर और कलयुग में मनुष्य विकर्मों में प्रवृत्त हो गया, और आज ऐसी स्थिति आ गई है मनुष्य की कि वो पाप को भी पुण्य समझ बैठा है और पुण्य को भी पाप में बदल देता है। आज संसार में पाप अपनी चरम सीमा पर है। अकर्म हुए सतयुग त्रेता युग में, विकर्म शुरू हुए द्वापर युग के बाद, कलयुग में विकर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। यही कलयुग के अंत का सबसे बड़ा प्रमाण है। कलयुग के अंत की बहुत सारी भविष्यवाणियां अखबारों में चर्चित रहती हैं। विश्व युद्ध हो जाएगा अगले साल से, सूरज स्थिर हो जाएगा, पोल्स बदल जाएंगे, ध्रुव बदलेंगे, बर्फ पिघल जाएगी, सागर का पानी ऊपर आ जाएगा, ये रोज भविष्यवाणियां चलती रहती हैं। पर इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण मनुष्य का बढ़ा हुआ पाप है। पाप की गर्मी बढ़ गई है, इसलिए बाहर की गर्मी बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना यूनिवर्स का, वो टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है कि मनुष्य के अंदर पाप की गर्मी बढ़ रही है, जिससे बर्फ पिघल जाएगा और जिससे सागर का पानी बहुत ऊंचा उठ जाएगा। तो हमें इससे मुक्त होना है। अब है अकर्म विकर्म, जब विकर्म, जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता होगा? किसी भी चीज की अति होने पर क्या हो जाता है? अंत। अंत किसी भी चीज की अति, पूरे जीवन में ही आप देख लें, किसी भी चीज की अति होने पर अंत हो जाता है। यहां तक कि कभी कभी अच्छी बातों के साथ भी ये सिद्धांत लागू होता है। बहुत खुशी हो गई हो आपको, बहुत बहुत खुशी, तो अंत हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन में बैलेंस रखना होता है। जब पाप का की अति हो जाए तब उसके अंत का समय समझना चाहिए, और वो समय अब है। न केवल दुनिया का अंत, लेकिन दुनिया के अंत से पहले पाप का अंत होगा। बहुत सुंदर समन्वय है दोनों का। पाप ने बढ़ते बढ़ते मनुष्य को इस स्थिति पर पहुंचाया है कि जब मनुष्य अपने जीवन में सुख और चैन का अनुभव नहीं कर रहा है, धनवान लोग सुखी नहीं, गरीब लोग भी परेशान हैं, एक मध्यम वर्ग का प्राणी भी तनावग्रस्त है, जीवन का सुख मनुष्य को वास्तव में नहीं मिल रहा है, संबंधों में कड़वाहट बढ़ गई है, कोई किसी को प्रिय नहीं लगता। स्वार्थ है तो प्रिय है, स्वार्थ पूर्ण हो गया शत्रुता है। अब बिना कलयुग के अंत से पहले पाप कर्मों का अंत हो जाएगा, और करेंगे कौन? कौन करेंगे पाप कर्मों का अंत? कौन करेंगे? बोलेंगे आप सब के हम? बोल सकते हैं? मन से आवाज जरा निकालें अपने कि इन पाप कर्मों का अंत हम करेंगे। हमें ही तो करना है, मनुष्य को ही तो करना, कोई जानवर थोड़ा ही करेंगे। जानवर तो पाप करते भी नहीं, देखा कोई जानवर पाप करता? जानवर तो दुखी भी नहीं है, सब मौज से अपना घास खाया, पानी पिया, मौज से सो रहे हैं, न घर की चिंता न बच्चों की। ये पाप और पुण्य तो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी को इस पाप को समाप्त करना है। अब तीसरी चीज है श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म, पुण्य कर्म। उसको सिखाता है स्वयं भगवान आकर। मनुष्यों ने भी सिखाया, आचार्यों ने, गुरुओं ने, हजारों साल से मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी, परंतु हम देख क्या रहे हैं? दवाइयां खाते गए, रोग बढ़ता गया, विज्ञान ने उन्नति की, अंधकार छाता गया। मनुष्य आज सोचता है उसकी बुद्धि का बहुत विकास हो गया, उसने सब कुछ जान लिया है, परंतु अगर वो अपने मन के अंदर टटोल कर देखे तो दिखाई देता है मन के हर कोने में अंधकार ही अंधकार है। क्यों हो गया? पुण्य कर्मों का ज्ञान तो दिया शास्त्रों में, कथाओं में, अनेक तरह के आख्यानों से मनुष्य को लोग, पंडित, आचार्य, विद्वान, गुरु अच्छे कर्मों की प्रेरणा देते आए, परंतु मनुष्य कर नहीं पाया, क्योंकि पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म का बीज है। अब आप फिर वहीं आ जाएं, जैसे पाप कर्म की परिभाषा हमने वर्णन की, देह भान से कर्म किए जाते हैं वो विकर्म बन जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो कर्म किए जाते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। इसके विपरीत अपने को आत्मा समझकर जो कर्म किए जाएंगे वो श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे। आत्मा समझने के बाद मनुष्य पाप कर्म नहीं कर सकता। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होकर जो कर्म किए जाएंगे वो पुण्य कर्म बन जाएंगे, और ऐसे ही हमारे श्रेष्ठ कर्म हमारी मन और बुद्धि को शक्ति प्रदान करेंगे। जैसे कर्मों की गहन गति बताई है, हम सब जो अब से पहले पाप और पुण्य की गति को नहीं समझते थे, ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप और श्रेष्ठ कर्मों को समझ गए हैं। सबसे बड़ा पाप तो कुछ और है। किसको पहला नंबर पाप कहें, किसको दूसरा नंबर पाप कहें, किसको तीसरा, किसको चौथा, पांचवा, अगर हम एक क्रम बनाएं तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन पहले नंबर का पाप, उसको समझना थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि का काम है। हम आपको बता देते हैं, आप उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे, केवल विचार करेंगे, और आपको अगर समझ में नहीं आए तो छोड़ देना। पहले नंबर का पाप है काम महाशत्रु, काम वासना, जिससे मनुष्य के मन बुद्धि की सबसे अधिक शक्तियां छीन होती हैं। इसलिए जिसको पुण्य का खाता बढ़ाना हो, जिसको श्रेष्ठ कर्म करने हो, जिसे मनुष्य से देवत्व की ओर चलना हो, या जिसे अपने परम पिता से मिलना हो, उसे पवित्र बनना ही चाहिए। पवित्रता ही सभी पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों का बीज है, आधार है। दूसरा पाप कर्म प्रारंभ होता है जो पाप क्रोध के वश किया जाए, चाहे किसी को मारना, चाहे बुरे वचन बोलना। देखिए, हत्या करना और बुरे वचन बोलना दोनों लगभग समान पाप बन जाते हैं। आप ध्यान देंगे इस बात पर, एक व्यक्ति बहुत खुश है, एक व्यक्ति चैन का जीवन जी रहा है, उसके जीवन में शांति समाई हुई है, और हम कटु वचन बोलकर उसकी शांति को भंग कर दें, उसकी नींद फिटा दें, तो ये भी मृत्यु के समान ही है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे मर्डर करने को, दूसरे की हत्या करने को बहुत बड़ा पाप कहा गया है, वैसे ही किसी के मन की खुशी की हत्या करना, किसी की शांति को नष्ट कर देना, ये भी समान रूप से बड़ा पाप है। ये ज्ञान दिया है हमें अब भगवान ने। तीसरा नंबर का पाप जो लोभ से प्रेरित हो, लोभ, चाहे वो धन का लोभ हो, चाहे वस्तुओं का लोभ हो, जिस जो मनुष्य को भ्रष्ट कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है, जो मनुष्य को चोरी की ओर प्रेरित करता है, जो मनुष्य से और बिजनेस धंधों में कई बुरे कर्म कराता है। आप सुनते हैं कि दवाइयों में भी लोग कुछ कुछ मिलावट कर देते हैं, दूध में भी लोग न जाने क्या क्या मिला देते हैं, भोजन खाने की चीजों में भी लोग न जाने क्या क्या मिला देते हैं, ये सब तीसरे नंबर के पाप। और इसी तरह मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से किए जाने वाले पाप क्रम से आते हैं। एक प्रश्न उठता है, लोग पूछते हैं, क्या मांस खाना, क्या शराब पीना, नशे लेना, सिगरेट पीना, ये भी पाप है? क्या उत्तर देंगे? बहनें बताएंगी, बहनें तो इन सब से मुक्त हैं, थोड़ी 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 तो मुक्त होंगी, पहले से मुक्त नहीं होंगी खाने से, बाकी तो बहुतों से मुक्त होती हैं। भारत में बहनें स्मोकिंग भी नहीं करती, कम करते हैं, विदेशों में तो हर एक लेडी के हाथ में सिगरेट, लेकिन भारत में अभी तक बहुत कम, बहुत कम। ये सब भी पाप हैं, क्योंकि इन सब से क्यों पाप हैं ये? कई लोग कहते हैं सभी लोग तो मांस खा रहे हैं, मछलियां बहुत पकड़ी जा रही, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, मछली खाई जा रही है सब जगह, मछली तो पानी का फल है, उसको खाने से क्या पाप होगा भला? इस सब खाने से पाप क्यों होता है, बहुत अच्छी तरह से जान लें। चाहे सिगरेट पीना हो, अल्कोहल पीना हो, नशे की गोली खाना हो, या ये मीट मटन अंडा ये सब खाना हो, इससे मनुष्य की बुद्धि और वृत्तियां दूषित हो जाती हैं, जिसके बाद मनुष्य पाप कर्म करता है। कोई सोचे कि वो तो शराब पी के रात को सो जाता है चैन से, इसमें क्या पाप है, वो कोई बुरा भी नहीं बोलता। ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो शराब पी के तूफान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं सारा दिन परेशान हो गए, टेंस हो गए, डिस्टर्ब हो गए, रात को पी ली और सोचा शांति रात को तो मिल जाए, दिन में तो नहीं मिलती। शांति तो मिल जाएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का ब्रेन, उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग कमजोर होता जाएगा। कमजोर और ब्रेन कमजोर होना माना अनेक समस्या और परिस्थितियों को निमंत्रण देना। तो इससे उसका जीवन कठिन हो जाएगा, शांत में नहीं रहेगा। इसलिए जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें सोच लेना चाहिए कि देव कुल के हम सब हैं, देवताओं के वंशज हैं हम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में भी कोई सिगरेट पीने की इच्छा नहीं रख सकता, नियम भी है, कोई चुप चुप के पी ले अलग बात, परंतु कोई इच्छा नहीं रख सकता। वहां जाते ही मनुष्य का मन स्वच्छ होने लगता है, देवी देवताओं के दर्शन करके मन पवित्र होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं इतने महान थे, तो आज उनकी जड़ मूर्तियां भी मनुष्य को श्रेष्ठता की प्रेरणा देती हैं और हम सब उनके वंशज हैं। तो अब परमात्मा स्वयं हम सभी आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं। अब जरा हम थोड़ी और गहन बातों की ओर आ जाएं। ये सब सुनकर मैं आप सभी के चेहरे देख रहा हूं कि सभी अपने जीवन को देख रहे होंगे कि हमने तो बहुत बहुत पाप कर लिए, खाता तो बढ़ गया है, लेकिन आप घबराए नहीं, इसको खत्म करने की विधि भी हम आपको सुना देते हैं। जो कुछ हो गया है वो तो हो गया, अब हमें इससे आगे बढ़ जाना, इसलिए आप अपनी खुशी को नष्ट न करें यहां सुनकर, बल्कि सीख लें कुछ सदा के लिए। कहावत है कि एक बार मनुष्य भूल करके अगर सदा के लिए भूल से मुक्त हो जाए तो वो भूल वरदान बन जाती है। मिस्टेक्स आर द बेस्ट लेसन फॉर ए मैन, कहावत है ना ऐसे, गलतियां उसके लिए सबसे अच्छा लेसन है, टीचर है, अगर वो अपनी गलतियों से कुछ सीख ले। अब सर्वश्रेष्ठ समय जबकि भगवान स्वयं हमारे सामने उपस्थित है, विचार कर लेना इस बात पर। कल्पना नहीं सुनाई जा रही आपको, भावना भी नहीं सुनाई जा रही कि हमने किसी को भगवान मान लिया हो, किसी गुरु को, किसी मनुष्य को, जो स्वयं भगवान है निराकार, वो इस समय स्वयं इस सृष्टि पर उपस्थित है हम सभी को हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाने के लिए आ गया है। मैं आपको याद दिला दूं, आप में से किसी ने गीता पढ़ी हो तो गीता के चौथे अध्याय में है, हे अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, मैं मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता, मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, मेरे कर्म मनुष्यों की तरह नहीं होते, मेरे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ये बहुत सुंदर महावाक्य है गीता के, सोचना है इस पर। लोग तो बस इसे पढ़ के छोड़ देते हैं, इस पर आगे विचार नहीं करते। भगवान भी संसार में आकर जब कर्म करता है तो उसके कर्म दिव्य और अलौकिक होते हैं, वो मनुष्यों जैसे नहीं होते। उसके कार्य हैं, आप सबने सुन ली है ये बात दूसरे लेसन में, परमात्मा के में क्या काम है भगवान का, क्या करता है भगवान, नए संसार की रचना, पुराने संसार का विनाश और सतयुग की पालना, तीन मुख्य कार्य हैं, और भी आगे बहुत से हैं। आप अपने चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता। जब वो आता है कहां, किसके तन में आता है, सुन चुके हैं आप ये सब बातें, भगवान आएगा जन्म नहीं लेगा, उसने कह दिया मेरा जन्म मनुष्यों की तरह नहीं, गर्भ से नहीं होता, फिर भी मैं आता हूं, तो कैसे आएगा भगवान? याद कर लें, किसी के तन में प्रवेश करेगा। और किसके तन में प्रवेश करेगा, ये जरा गहरी बात है। भगवान अगर इस संसार में आए तो वो किसके तन में आए, ये आप सुन चुके हैं, और अच्छी तरह इसको जानने की कोशिश करना। मैं एक लाइन में बता दूं, जो सतयुग के आदि में श्री कृष्ण थे, संसार की सबसे श्रेष्ठ आत्मा, वो जन्म लेते लेते जब कलयुग के अंत में पहुंच जाते हैं तो उनके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी या सुनाई जाएगी आपको। उनके कर्म दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी और के तन में प्रवेश होकर कार्य करते हैं, वो ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर बोलते हैं, वो उसके तन में प्रवेश होकर ज्ञान देते हैं, कर्म करना सिखाते हैं। इसलिए उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं, मनुष्य के कर्म मनुष्य को बांध रहे हैं ना। जो कर्म करेंगे वो मन को बांध रहा है, क्योंकि आत्मा शरीर में बंधी हुई है। बहुत छोटा सा सिद्धांत, आत्मा शरीर में बंध गई है, इसलिए हर कर्म बंधन बन रहा है। परमात्मा जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं तो वो उस तन में बंधते नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं, जब चाहे आ गए जब चाहे चले गए, सदा उसके तन में नहीं रहते, इसलिए उसके कर्म उसको बांधते नहीं, और वो दिव्य कर्म बन जाते हैं, जिससे सारे संसार को, मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान मिल जाता है। हमारे कर्म अगर हमें अब श्रेष्ठ बनाने हैं, अब ये समय चल रहा है जबकि हम अपने पिछले सभी पाप कर्मों को नष्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल नई बात है, क्योंकि आज तक मनोविज्ञान में और भारतीय दर्शन में बहुत लोग ये मानते रहे कि पूर्व में किए गए पाप कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने ये चिंतन किया कि नहीं, नष्ट भी किया जा सकता है। मैं आपको इतनी ही बात कहूंगा कि हजारों साल से द्वापर युग से मनुष्य ने जितने पाप किए हैं उन्हें अगर भोगना पड़े तो बहुत मुश्किल काम है, मनुष्य जी नहीं सकता, उसकी शांति सदा के लिए भंग हो जाएगी, निरंतर उसको सजाओं का अनुभव होने लगेगा। इसलिए पिछले पाप कर्मों को, चाहे किसी ने कोई भी पाप किया हो, इस जन्म में किया हो, पिछले जन्मों में बहुत किए जिनका हमें ज्ञान नहीं है, उन सब पाप के स्टॉक को, पाप के इस बंधन को योग अभ्यास के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज, श्रेष्ठ कर्म करके, पुण्य कर्म करके पाप कर्मों के फोर्स को हल्का किया जा सकता है। दो ही विधि हैं, चाहे योग अभ्यास से, योग को अग्नि कहते हैं, योग अग्नि, ये नया नाम है योग के लिए, जिस अग्नि में मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे हम योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप नष्ट कर लें, और पुण्यों का खाता बढ़ाकर श्रेष्ठ कर्म करके पुण्यों के पाप के प्रभाव को धीमा कर दें, दोनों ही चीज आवश्यक है। अब हम पुण्य क्या क्या कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म क्या कर सकते हैं, जो हम आपके सामने बताएं उसमें से आप एक दो तीन चुन लेना, और हम इस विश्वास के साथ ही आपको ये बात कह रहे हैं कि इस सुंदर माहौल में बैठकर आप में से हरेक शिव बाबा का बच्चा, देवताओं का वंशज, आज से कुछ न कुछ श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म करने का संकल्प करेंगे, तन से, मन से और धन से, बोल से और संकल्प से पुण्य कर्म करना है। तन से अच्छे काम, सुखदायी काम, दूसरों को मदद करने के काम, मन से दूसरों के लिए शुभ भावनाएं, दूसरों को अच्छे विचारों से सुख देने का काम, मुख से ऐसे बोल जो दूसरों को सुख दें, प्रोत्साहन दें, दूसरों की उमंग उत्साह बढ़ाएं, दूसरों के तनाव को कम करें। धन से क्या अच्छे कर्म किए जा सकते हैं? बहुत सारे। धन का दुरुपयोग हो रहा है, धन से मनुष्य कई पाप कर रहा है, धन कमाया भी पाप से जा रहा है और उसका उपयोग भी पाप से हो रहा है। ये बात सुनकर भी आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि आजकल का बिजनेस, आजकल के धंधे ऐसे हैं कि बिना इस सब के तो कमाई होगी नहीं, ईमानदारी से धंधे करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। ठीक बात है, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि पाप कर्म से कमाया हुआ धन मनुष्य को सुख प्रदान नहीं करता। पाप कर्म से कमाया हुआ धन मनुष्य को पाप की ओर प्रवृत्त करता है। पाप कर्म से कमाए हुए धन से अगर आप अपने बच्चों की पालना करते हैं तो बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, ये कर्मों की गति है। ठीक है, आज माहौल ऐसा है, आज बिजनेस और धंधे ऐसे हैं कि उसमें न चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। गवर्नमेंट के टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जिसमें मनुष्य को बाध्य होकर भी कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, जितना बचा जा सके, जितना दूसरों को हम धोखा न दें, जितना सहज भाव से हमें धन प्राप्त हो जाए, वही कल्याणकारी है। इस तरह धन के द्वारा धन कमाना भी हो सके तो अच्छे तरीकों से होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की धन की इच्छा तो कभी तृप्त नहीं होती है। एक गरीब व्यक्ति चाहता है उसके पास 10,000 रुपए हो जाएं, 10,000 होने पे सोचता है 4 बच्चे हैं, इनकी शादी भी तो करनी है, 50 जमा कर लूं। 50 होने पर सोचता है एक अच्छा मकान भी तो हो जाए, 5 लाख तो हो जाए, 5 लाख होने के बाद 20 हो जाए, 25 हो जाए, करोड़ हो जाए। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, धन की इच्छा भी और आवश्यकताएं दोनों बढ़ रही हैं। इच्छाएं मनुष्य को पाप की ओर प्रवृत्त कर रही हैं। आप अपने धन का प्रयोग अवश्य मनुष्यों को सुख देने में भी प्रयोग करें। हर मनुष्य को एक नियम बना लेना चाहिए। हमारे भारत में प्राचीन काल से धर्म के क्षेत्र में ये नियम था कि हर व्यक्ति अपनी कमाई का 10% धर्म के कार्यों में उपयोग करेगा। लोग करते थे, उन्हें बहुत सुख प्राप्त होता था। हर एक को सोचना चाहिए कि अपनी कमाई का एक हिस्सा सुखदायी कार्यों में उपयोग किया जाए। और सबसे अच्छा कार्य है, हमने आपको बताया, इस समय भगवान स्वयं इस संसार को बदलने का कार्य कर रहे हैं। अगर आप अपने कुछ धन का प्रयोग मनुष्यों को मार्ग दिखाने में, उन्हें पाप से मुक्त करने में, उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान देने में करेंगे तो पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब मैं कुछ 2 छोटी बातों पर आपका ध्यान दिलाऊं जो आपके जीवन के लिए बहुत सुखदायी हैं। मनुष्य कोई भी अच्छा कर्म करके, दान करके, पुण्य करके अगर ये भावना रखता है कि मैंने किया, तो क्या होगा? क्या होगा? उसका पुण्य कटता जाएगा। कई लोग मंदिरों में पैसा दे देते हैं और एक पत्थर भी लगवा देते हैं, संगमरमर का लगवाते हैं ना, खुदवा देते हैं कि भाई फलाने सेठ ने इतना पैसा दिया। लोग पढ़ते रहते हैं, जितनी बार लोग पढ़ेंगे उतनी बार पुण्य कटेगा। आपने कहीं 10,000 रुपए का दान कर दिया और 50 जगह वर्णन किया आके कि भाई फलाने काम में हमने 10,000 रुपए डोनेट किए हैं, आपका पुण्य 0 हो गया। ये बहुत गहन गति है, सभी को समझ लेना चाहिए इसको बहुत अच्छी तरह। अच्छे कार्य, ये तो धन की बात हमने की, आपने किसी को साथ दिया, किसी को मदद की, किसी बीमार व्यक्ति का उपचार करने में उसको मदद की, किसी की सेवा की, और फिर ये संकल्प रखे, विचार रखे कि मैंने किया है। एक तो होता है वर्णन करना, वो तो हो गई मोटी बात जो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है आपने अपने मन में रखा कि मैंने ये किया, उससे भी पुण्य कटता जाएगा। इसीलिए आज लोग अच्छे कार्य करके, दान पुण्य करके भी सुख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वर्णन करने से, बार बार सोचने से उनका पुण्य का खाता कटता ही जाता है। कर्म करने की कला सीखनी है। अंतिम बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, मनुष्य जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी, जिसको भूलने के कारण आज मनुष्य का हर कर्म उसको बांध रहा है। पाप कर्म तो बांध ही रहे हैं, लेकिन मनुष्य के अच्छे कर्म भी उसको बांध लेते हैं। अगर कर्म करने के पीछे मैं रहता है तो, इसलिए जो बुद्धिमान हैं उन्हें चाहिए वो निष्काम भाव से कर्म करें। मैं आपके सामने अब ये दो ही चीज रख रहा हूं जिस पर आप बहुत ध्यान देंगे। पाप पुण्य की बात आपने सुन ली, और सुना इसलिए गई कि आप अपने को चेक कर लें और अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करें और अब पुण्य कर्मों की ओर बढ़ें, क्योंकि मनुष्य का साथी तो उसका कर्म ही है। विपत्ति के समय, परिस्थितियों के समय मनुष्य को उसके पुण्य कर्म ही बचाते हैं। पैसा, मनुष्य, पद, पोजीशन कोई काम नहीं करता। निष्काम भाव से कर्म करें। थोड़ा सा इसको जान लें, जब आप कोई कर्म करने जा रहे हैं तो उसके पीछे होने वाली कामना को छोड़ के कर्म करें। मैं बहनों के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं। आपके घर में मेहमान आ गए 10, आपने खाना बनाया, मेहनत की, 4 घंटे लगाए, बहुत अच्छी चीजें बनाई, सबने खाया, खाने के बाद कह दिया मजा नहीं आया। कैसा खाना बनाया बहन जी आपने, बिल्कुल मजा नहीं आया, मजा ही बिगड़ गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी खुशी गुम हो जाएगी। आपने जो बहुत खुशी और उमंग से काम किया था, थक जाएंगे आप, और होगा ये अच्छे मेहमान आए, हमने इतनी मेहनत भी की फिर भी खुश नहीं, ये कभी खुश होते ही नहीं। और अगर आप सोच लें कि मेरा कार्य तो है घर में मेहमान आए उनकी सेवा प्यार से करना, आपने बहुत प्यार से भोजन बनाया और उनको खिला दिया, अब चाहे वो परिणाम कुछ भी दें, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग है, आपने समोसा बनाया हो जरूरी नहीं सबको ही अच्छा लगा हो, मिर्ची तेज होगी 10 खुश होंगे और जिनको नहीं खानी वो परेशान होंगे, आपको कहेंगे आपने क्यों मिर्ची डाल दी, हमको तो एसिडिटी है, अल्सर हो गया, हमें तो ये हो गया। खटाई किसी को आपने खिला दी, कईयों को तो बड़ा मजा आएगा कि वाह वाह, और किसी को एसिड बढ़ जाएगा, आपको कहने लगेंगे कि ये क्यों किया। तो कर्म करें बहुत खुशी से, बहुत उमंग से, अच्छी भावनाओं से, और फल को भूल जाएं। लोग क्या कहेंगे इसकी कामना को छोड़ दें, क्योंकि मनुष्य हर कर्म के पीछे अपनी प्रशंसा सुनने का इच्छुक होता है। मनुष्य की एक आम प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति छोटा बड़ा, हमने कोई काम किया हम सोचते हैं 4 लोग कह दें कि बहुत अच्छा किया तो हमारी उमंग बढ़ जाएगी, अच्छा भी है, हमें खुशी हो जाएगी और काम अच्छी तरह हम करेंगे। इसलिए हमें तो ये सीखना चाहिए कि हम दूसरों के कर्मों को एप्रिसिएट करें। जीवन की कला है ये, हमें चाहिए कि हम दूसरों के कर्मों की प्रशंसा करें। भोजन अच्छा न भी बना हो ना, तो भी कहें आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा भोजन बनाया, उससे क्या होगा, मन उसको कर्म करने की नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आपके घर में बच्चे हैं, ठीक से नहीं पढ़ रहे, पढ़ने में कमजोर हैं, आप उनको उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलो। ये ना बोलो कि तुम तो बुद्धू हो, तुम तो फेल होगे सदाई, पढ़ोगे ही नहीं, तुम तो बेअकल हो, हमारे घर में पता नहीं कहां से पैदा हो गए, कहते हैं ना आजकल ऐसे। ये नहीं, प्रशंसा करने का गुण होना चाहिए और स्वयं के लिए प्रशंसा की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये निष्काम कर्म योग करने की कला है। बहुत सुख मिलेगा, कर्म करो, सुख दो मनुष्य को और भूल जाओ। सहयोग करो, आपका कोई मित्र है, रिलेटिव है, उसका कोई कार्य हो रहा है, आपने उसको मदद कर दी, भूल जाओ। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का फल अच्छा होगा ही। कामना हम करते हैं कि अच्छा हो, तो फल कच्चा रह जाता है, बस ये रहस्य है। कर्म का फल तो है ही, आपने महान काम किया वो श्रेष्ठ फल देने वाला है, लेकिन आप श्रेष्ठ फल की कामना करने लगे कि अब तक तो मिला नहीं, पता नहीं कल मिलेगा या नहीं, तो फल कच्चा रह गया, मजा नहीं आएगा। इसलिए जो भी आप कर्म करें, आपने कहीं दान किया है, किसी भूखे को भोजन खिलाया है, किसी को मदद की है, कोई प्याऊ बनवा दी है, कोई और कहीं बच्चों के लिए आपने कुछ किया है अपने, उसको अपना कर्तव्य समझकर करो। आजकल कई बुजुर्ग लोग जब 60 साल की आयु पार कर लेते हैं तो बहुत परेशान रहने लगते हैं, देखा आपने सब। और आप में से जो बुजुर्ग हो उसको भी ध्यान रखना है कि आयु जब अंत में पहुंच जाए तो मनुष्य क्यों परेशान होता है, कामनाओं के वश। वो सोचता है मैंने इन बच्चों की इतनी पालना की थी, पेट काट कर इन्हें पढ़ाया था, इन्हें धंधे कराए, इनकी शादियां कराई, इनको मकान बना के दिए, और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार हूं, तो ये पूछते ही नहीं। तो बीमारी का दुख कम और बच्चे पूछ नहीं रहे, इसका दुख ज्यादा। ये कारण है ओल्ड एज में मनुष्य की परेशानियों का। भिन्न भिन्न कामनाएं मनुष्य को परेशान करती हैं, इसलिए जीवन में निष्काम हो जाएं। निष्काम का सुख बहुत ज्यादा है। और अब अंतिम बात, जीवन तो कर्म प्रधान है, हमेशा कर्म करना है। और आपको याद रहेगा कि कर्म तो मनुष्य के साथ परछाई की तरह है, कर्म तो फल देगा ही, इसलिए अपने कर्म को खेल बनाओ। कर्म एक खेल है, आपने पहले लेसन में सुन लिया, हम आत्माएं हैं, एक्टर हैं, इस शरीर की ड्रेस को पहन के हम एक्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। एक्ट करो, कर्म को खेल की तरह करो। कर्म जब खेल की तरह नहीं किया जाता तो कर्म थकाने वाला है, कर्म टेंशन करने वाला है। आपको आज बहुत काम हो गया घर में, शादी हो रही है, बहुत खुशी से काम तो हो रहा है, लेकिन आपके पास ज्यादा काम है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और आप टेंशन में आ गए, बहुत काम है, बहुत काम है। आपके पास ऑफिस में ज्यादा काम है, 10 काम एक साथ बता दिए गए आपको, आपकी दुकान पर अनेक काम एक साथ आ गए, ग्राहक भी खड़े हैं, तो अकाउंट वाले भी हैं, तो माल भी आ रहा है, आप परेशान हो उठते हैं, ये पहले करूं, ये करूं, कैसे होगा। समझ लो काम काज खेल है, आप अपने कर्म में खेल की भावना बना दो, खेल की तरह आनंद लो कर्म का, तो जीवन का सबसे अधिक आनंद आ जाएगा। ये है कर्मों की गुह्य गति। इससे आपने अवश्य कुछ ना कुछ सीख लिया होगा, कम से कम इतना सभी सीख लेंगे कि अपने बोल से किसी को कष्ट न पहुंचे। बोल के द्वारा सुख देना बहुत सहज काम है, और अगर आप किसी को बार बार ये कहते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया, बच्चे को आप बार बार कहते हैं कि तुम तो बुद्धू हो, रोज वो ठीक नहीं पढ़ता, तुम तो बुद्धू हो, तो वो बुद्धू ही रह जाएगा। और अगर आप उसे कहते हैं कि नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पढ़ो, फर्स्ट क्लास ले आओगे, तो उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। असंत में एक माता का ऐसा ही उदाहरण दे के मैं समाप्त कर देता हूँ। पीछे एक माता आई, जब हमने ये बात कही तो कहने लगी, ये बात ठीक है, मैं अपने बच्चे को रोज शैतान कहती हूँ, वो जरा चंचलता करता है, तो तुम तो शैतान हो, हमारे घर में शैतान, तो वो शैतान ही होता जाता है। 12 साल का हो गया है, कहा मैं बहुत दिन से ये शब्द प्रयोग कर रही हूँ, आज से मैं करूंगी शब्द प्रयोग कि तुम तो देवता हो बेटा। और उसने, अब मैं दोबारा गया था उनके पास तो बताया कि जब से मैं ये कहने लगी हूँ ना उसको, बेटा तुम तो देवता हो, उसमें संपूर्ण परिवर्तन हो गया है। तो हमारे बोल निर्माण करते हैं। माँ बाप तो परिवारों के रचने वाले हैं, वो अपने बोल से अपनी प्रवृत्ति को जितना चाहे सुखदायी बना सकते हैं। इस तरह आप सभी अच्छे कर्म का सुख प्राप्त करो। ओम शांति। आत्मा यहाँ विराजमान हूं, और उसके बाद ऊपर ले चलेंगे अपनी बुद्धि को, परम धाम में देखेंगे, यहां से ही शिव बाबा चमक रहा है, शिव बाबा हमारा पिता है, वो हम उसके बच्चे हैं, हम आत्माएं शांत हैं। इस तरह के विचार करते हुए आप एक संकल्प करेंगे कि उससे बहुत सुख के, शांति के वाइब्रेशंस, किरणें हमें आ रही हैं, जैसे हमारा परम पिता हमसे प्रसन्न होकर हमें सुख शांति की किरणें दे रहा है। इस चिंतन में, इस अभ्यास में 3 मिनट के लिए सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। ओम शांति।